एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमारे आज की दुनिया की नब्ज पकड़ती है, उन सवालों से जूझती है जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, और ये किताब है युवाल नोआ हरारी की 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी के लिए 21 सबक। और देखिए, ये किताब इतनी जरूरी इसलिए लगती है मुझे क्योंकि आजकल मतलब जिस दौर में हम हैं,
हाँ,
चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, इतना कंफ्यूजन है चारों तरफ, है ना, तो ये किताब उसी उथल पुथल को समझने में थोड़ी मदद करती है।
सही कहा, टेक्नोलॉजी तो जैसे सरपट भाग रही है, रोज राजनीति में कुछ नया हो रहा है, समाज बदल रहा है, और कई बार लगता है भाई हम एक चौराहे पर खड़े हैं, समझ नहीं आता कौन सा रास्ता कहाँ ले जाएगा, भविष्य में क्या है। तो क्या ये किताब कुछ कुछ दिशा दिखाती है, या कम से कम आज का जो हाल है उसका एक साफ आईना तो है ही?
आईना तो बिल्कुल है, साफ आईना। दिशा शायद सीधी सीधी ना बताएं, पर हाँ सोचने का एक फ्रेमवर्क जरूर देती है, खासकर जब ये दो बड़ी चीजें, एक तो इन्फोटेक यानी सूचना क्रांति,
हाँ,
इंटरनेट एआई ये सब,
हाँ,
और दूसरी बायोटेक मतलब जैव प्रौद्योगिकी,
हाँ,
जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, ये दोनों जब मिल रही हैं तो ये सिर्फ हमारी नौकरियां या इकोनॉमी नहीं बदल रही,
नहीं,
ये शायद इंसान होने का मतलब ही बदल रही हैं।
हाँ,
तो किताब हमें इन्हीं बड़े बदलावों के बीच खड़ा करके पूछती है, भाई अब आगे क्या?
तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो किताब की गहराइयों में उतरने से पहले क्यों ना थोड़ा लेखक के बारे में जान ले। युवाल नोआ हरारी कौन है ये, और इनकी बातों में ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर में लोग इन्हें इतना इतना ध्यान से सुनते हैं?
हाँ जरूर, देखिए हरारी एक इजरायली इतिहासकार हैं और दार्शनिक भी, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत मेरे ख्याल से उनका नजरिया है। वो किसी एक चीज के एक्सपर्ट नहीं है,
अच्छा,
वो इतिहास, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इन सबको मिलाकर एक बहुत बहुत बड़ी तस्वीर देखते हैं। हजारों साल का जो इंसानी सफर है उसके पैटर्न को आज की दिक्कतों से जोड़ते हैं, ये उनकी यूनिकनेस है।
हाँ, और उनकी पिछली दो किताबें तो बहुत ही मशहूर हुई, सेपियंस, जिसने बताया कि हम मतलब इंसान यहाँ तक पहुंचे कैसे,
बिल्कुल,
और फिर होमो डेयस, जिसने भविष्य की कुछ कुछ चौंकाने वाली थोड़ी डरावनी सी तस्वीरें भी दिखाई। तो ये तीसरी किताब 21 लेसन्स उस कहानी को कैसे आगे बढ़ाती है, क्या ये उसी कड़ी में है?
हाँ बिल्कुल उसी कड़ी में। अगर सेपियंस ने अतीत देखा, होमो डेयस ने भविष्य की तरफ झांका, तो 21 लेसन्स सीधे सीधे आज पर, हमारे वर्तमान पर फोकस करती है, और यही इसकी खासियत है।
अच्छा,
वो एक इतिहासकार की पैनी नजर से आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो राजनीति है, उसकी चुनौतियों को परखते हैं, और वो उन बड़ी बड़ी कहानियों को खोल कर रख देते हैं जिनके सहारे हम जीते हैं।
कहानियां
जैसे
जैसे राष्ट्रवाद,
धर्म, पैसा या उदारवाद, ये सब एक तरह की कहानियां ही तो हैं जो समाज को चलाती हैं।
हरारी दिखाते हैं कि ये कहानियां जो 20वीं सदी में बहुत कामयाब थीं, अब 21वीं सदी की जो नई हकीकतें हैं, खासकर टेक्नोलॉजी का जो दबाव है, उसमें कैसे कमजोर पड़ रही हैं, या शायद नाकाफी साबित हो रही हैं।
दिलचस्प। तो ये किताब आखिर है किस बारे में? क्या ये सच में 21वीं सदी की 21 समस्याओं की कोई लिस्ट है और उनके 21 समाधान? मतलब नाम तो यही कहता है, क्या कोई रेडीमेड जवाब मिलते हैं इसमें?
नहीं नहीं रेडीमेड जवाबों वाली किताब तो ये बिल्कुल नहीं है, समाधानों की कोई चेकलिस्ट नहीं है, उससे ज्यादा ये आज के समय का एक डायग्नोसिस है, एक गहरा विश्लेषण। किताब का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि 20वीं सदी की जो बड़ी विचारधाराएं थीं,
जैसे जैसे लिबरलिज्म यानी उदारवाद, फैसिज्म, कम्युनिज्म, वो या तो खत्म हो चुकी हैं या फिर आज की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बायोटेक्नोलॉजी, उनका सामना करने में हांफ रही हैं, उनमें अब वो दम नहीं रहा। और इससे क्या हो रहा है, दुनिया में एक भ्रम फैल रहा है, एक खालीपन सा है, चिंता का माहौल है।
एआई और बायोटेक्नोलॉजी मतलब मशीनें जो इंसानों की तरह सोचने लगे, और जीवन के कोड यानी डीएनए में हेर फेर करने की क्षमता।
हाँ बिल्कुल, और हरारी कहते हैं कि इन दोनों का जो संगम है वो एक ऐसी क्रांति ला रहा है जो शायद औद्योगिक क्रांति से भी कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी होगी।
बाप रे।
तो किताब का जो सेंट्रल सवाल है वो यही बनता है कि भाई इस अभूतपूर्व तकनीकी और सामाजिक उथल पुथल के दौर में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिनका हमें सामना करना है, और हम मतलब एक व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, पूरी दुनिया के तौर पर इनसे निपटें कैसे, ताकि भविष्य बेहतर हो या कम से कम भयानक ना हो। हरारी आसान जवाब नहीं देते, जैसा मैंने कहा वो सोचने का एक ढांचा पेश करते हैं। किताब को 5 हिस्सों में बांटा गया है, तकनीकी चुनौती, फिर राजनीतिक चुनौती, निराशा और आशा, फिर सत्य, और आखिर में लचीलापन, जिसे अंग्रेजी में रेजिलियंस कहते हैं। ये उन सब के लिए है जो बदलाव की रफ्तार से हैरान हैं, परेशान हैं और दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, तो चलिए इन हिस्सों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे विस्फोटक हिस्से से, तकनीकी चुनौती। यहाँ हरारी का मुख्य बिंदु क्या है, क्या कह रहे हैं वो?
यहाँ उनका फोकस साफ तौर पर AI और बायोटेक पर है। वो कहते हैं कि ये तकनीकें सिर्फ हमारी नौकरियां ही नहीं बदलेंगी,
नहीं,
बल्कि ये उदारवाद के जो सबसे बुनियादी विचार हैं उनको ही चैलेंज कर रही हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमारी तर्क करने की क्षमता, और सबसे बढ़कर स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल।
स्वतंत्र इच्छा को चुनौती? अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारा कानून, हमारी नैतिकता, सब कुछ तो इसी पर टिका है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं अपनी मर्जी से।
बिल्कुल, और यही पर हरारी एक बहुत ही कह सकते हैं असहज करने वाली, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो डरावनी बात कहते हैं, खासकर वो जो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता वाला अध्याय है। उनका तर्क है कि जिसे हम स्वतंत्र इच्छा मानते हैं,
हाँ,
वो जीव विज्ञान की नजर से देखें तो शायद एक भ्रम है, एक इल्यूजन। हमारे जो एहसास हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे फैसले, ये सब असल में हमारे दिमाग और शरीर में होने वाले जटिल बायोकेमिकल एल्गोरिथम का नतीजा है।
बायोकेमिकल एल्गोरिथम मतलब
जैसे कंप्यूटर का एल्गोरिथम होता है,
हाँ,
वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग के अंदर भी केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के पैटर्न हैं जो हमारी भावनाओं और फैसलों को तय करते हैं, और ये हमारी चेतना से भी पहले तय हो जाते हैं।
अच्छा, लेकिन अगर ये हमेशा से ही ऐसा था तो अब AI और बायोटेक से क्या बदल गया है? अब क्या खास बात है?
बदला ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि अब टेक्नोलॉजी इन बायोकेमिकल एल्गोरिथम्स को हमसे बेहतर समझने की कगार पर है। सोचिए, जैसे जैसे AI और बायोमेट्रिक डेटा, मतलब हमारे चेहरे की पहचान, दिल की धड़कन, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी, शायद भविष्य में ब्रेन स्कैन भी,
हाँ,
ये सब इकट्ठा होगा तो बाहरी सिस्टम, बड़ी कंपनियां, सरकारें, हमारी भावनाओं को, हमारी पसंद नापसंद को, हमारे राजनीतिक झुकाव को हमसे पहले जान पाएंगी।
ओह!
और सिर्फ जानेंगी ही नहीं, शायद उन्हें हमारी मर्जी के खिलाफ या हमें बिना पता चले मैनिपुलेट भी कर पाएंगी, प्रभावित कर पाएंगी। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि आपकी अगली पसंद, चाहे वो कोई गाना हो या कोई नेता, वो शायद आपकी अपनी न हो, वो किसी एल्गोरिथम की देन हो सकती है। हरारी इसे इंसानों को हैक करना कहते हैं।
इंसानों को हैक करना? बाप रे, ये सुनने में ही कितना अजीब और डरावना लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो निजी आजादी है, लोकतंत्र का जो पूरा विचार है, वो सब खतरे में है। और इसका समाज में बराबरी पर क्या असर पड़ेगा, मतलब इक्वालिटी पर?
हाँ, ये खतरा वाकई बहुत बड़ा है, और इक्वालिटी यानी समानता वाले अध्याय में हरारी एक और बड़ी चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि 21वीं सदी में असली शक्ति, असली पावर डेटा के मालिक के पास होगी।
डेटा?
हाँ, डेटा। जिसके पास डेटा होगा वही भविष्य को कंट्रोल करेगा, और इससे सिर्फ भयानक आर्थिक असमानता पैदा नहीं होगी कि भाई कुछ डेटा रिच कंपनियां या देश बहुत आगे निकल गए और बाकी पिछड़ गए, बल्कि शायद इतिहास में पहली बार जैविक असमानता, बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी भी पैदा हो सकती है।
जैविक असमानता? इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कैसे?
इसका मतलब ये कि जो अमीर और शक्तिशाली लोग हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो इन्हेंसमेंट के जरिए खुद को अपग्रेड कर लें।
अपग्रेड जैसे?
जैसे शायद ज्यादा लंबी उम्र पालें, ज्यादा बुद्धिमान बन जाएं, बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, और एक तरह के सुपर ह्यूमन बन जाएं, जबकि बाकी आम इंसान ही रह जाएं।
अरे बा,
सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ लोग जेनेटिक बदलावों से ज्यादा सेहतमंद, ज्यादा स्मार्ट हो गए, और बाकी वैसे के वैसे। ये एक तरह की जैविक जाति व्यवस्था, बायोलॉजिकल कास्ट सिस्टम होगी, जो आज की आर्थिक असमानता से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होगी।
ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि समाज अंदर से कैसे बढ़ सकता है, हरारी ये भी दिखाते हैं कि यही टेक्नोलॉजी हमारे देशों के बीच के रिश्तों को, हमारी पूरी राजनीति को भी हिला रही है, और यहीं से किताब का दूसरा भाग शुरू होता है, राजनीतिक चुनौती। इसमें किन चुनौतियों पर बात होती है?
मम, इसमें भी कई गंभीर मुद्दे हैं, जैसे हमारे समुदायों का क्या हो रहा है, क्या अलग अलग सभ्यताएं टकराने वाली हैं, धर्म की क्या भूमिका होगी, अप्रवासन यानी इमिग्रेशन का मुश्किल सवाल। लेकिन मैं नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद वाले अध्याय पर थोड़ा रुकना चाहूंगा, ये अहम है।
हाँ, राष्ट्रवाद।
हरारी मानते हैं कि राष्ट्रवाद लोगों को पहचान देता है, अपनेपन का भाव देता है, जो जरूरी भी है। लेकिन वो तर्क देते हैं कि 21वीं सदी की जो तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं, परमाणु युद्ध का खतरा, जलवायु परिवर्तन और यही तकनीकी उथल पुथल, इनसे निपटने के लिए राष्ट्रवाद एक नाकाफी, बल्कि मैं कहूंगा एक खतरनाक औजार है।
खतरनाक? लेकिन हर देश अपनी समस्याओं को पहले हल करना चाहेगा, ये तो स्वाभाविक लगता है ना। राष्ट्रवाद इसमें खतरनाक कैसे हो सकता है? और क्या ये नहीं हो सकता कि हम अपनी स्थानीय पहचान भी रखें और वैश्विक सहयोग भी करें?
अच्छा सवाल है। देखिए, स्वाभाविक लग सकता है, पर हरारी का तर्क ये है कि ये तीनों समस्याएं, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, टेक डिसरप्शन, ये ग्लोबल हैं।
हाँ, ये तो है।
परमाणु बम किसी देश की सरहद नहीं पहचानता, जलवायु परिवर्तन पूरी धरती को असर करता है, और AI या जेनेटिक इंजीनियरिंग के फायदे या नुकसान भी तो ग्लोबल ही होंगे, है ना?
सही बात है।
तो इनका समाधान कोई एक देश अकेले कर ही नहीं सकता।
सही बात है,
इसलिए अभूतपूर्व, मतलब पहले कभी नहीं हुआ वैसा वैश्विक सहयोग चाहिए। अब ऐसे में अगर हर देश सिर्फ मेरा देश पहले वाली सोच रखेगा, तो हम इन समस्याओं का हल निकालने के बजाय उन्हें और बढ़ा देंगे और शायद सामूहिक विनाश की तरफ बढ़ जाएंगे। स्थानीय पहचान जरूरी है, बिल्कुल है, पर उसे वैश्विक जिम्मेदारी के साथ बैलेंस करना होगा।
और समुदाय के बारे में उनका क्या कहना है? आजकल तो हम सब ऑनलाइन जुड़े हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसा लगता है समुदाय तो मजबूत हो रहा है, नहीं?
हरारी इसी विरोधाभास पर उंगली रखते हैं कम्युनिटी वाले अध्याय में। टेक्नोलॉजी हमें ऑनलाइन तो जुड़ती है, पर क्या ये असली मानवीय जुड़ाव की जगह ले सकती है? अक्सर होता क्या है कि हम अपने ही जैसे विचार वाले लोगों के डिजिटल बुलबुलों में, इको चेम्बर्स में कैद हो जाते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
जैसे हम सब अपने अपनी पसंद की आवाज वाले छोटे छोटे कमरों में बंद हो गए हैं, और बाहर की दुनिया की जो अलग अलग आवाजें हैं वो हम तक पहुंची नहीं रही, तो वो जो असली गहरा मानवीय समुदाय का एहसास होता है वो शायद इस ऑनलाइन दुनिया में कमजोर पड़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है।
ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, ये तो हुई तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां। अब जरा किताब के चौथे हिस्से पर आते हैं, सत्य यानी ट्रूथ। आजकल पोस्ट ट्रूथ, फेक न्यूज, हाँ, ये शब्द बहुत सुनाई देते हैं। इस पर हरारी का क्या नजरिया है?
यहाँ भी हरारी एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो मानते हैं कि पोस्ट ट्रूथ कोई एकदम नई चीज नहीं है।
अच्छा, नई नहीं है?
नहीं, उनका कहना है कि इंसान हमेशा से कहानियों, मिथकों और कल्पनाओं के सहारे जीते आए हैं, जैसे धर्म, राष्ट्र, पैसा, ये सब क्या है? ये कहानियां ही तो हैं जो शब्दशः सच नहीं होती, पर समाज को जोड़ने का, चलाने का काम करती हैं। सेपियंस में उन्होंने यही तो दिखाया था।
हाँ, बात तो सही है। तो फिर आज खतरा क्या बढ़ गया है? अगर हम हमेशा से ही कल्पनाओं में जीते आए हैं, तो अब डर किस बात का?
आज खतरा इसलिए कई गुना बढ़ गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी, खासकर AI और बिग डेटा की मदद से बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा पर्सनल और एकदम टारगेटेड प्रोपेगेंडा बनाना संभव हो गया है।
टारगेटेड प्रोपेगेंडा?
हाँ, ऐसा प्रोपेगेंडा जो हमारी भावनाओं को, हमारे डर को, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, उनका फायदा उठाकर हमें इस तरह प्रभावित कर सकता है कि हमें शायद पता भी न चले। इससे क्या हो रहा है कि सच्चाई और कल्पना के बीच, असली खबर और फेक न्यूज के बीच फर्क करने की जो हमारी क्षमता है वो कमजोर पड़ रही है। सूचना का इतना बड़ा सैलाब है, इतना शोर है कि उसमें स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है, और कहीं ज्यादा जरूरी भी।
इतनी सारी गंभीर और थोड़ी थोड़ी डराने वाली चुनौतियों के बाद क्या हरारी कोई उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं? कोई समाधान? किताब का जो आखिरी हिस्सा है, लचीलापन या रिजिलियंस, वो शायद इसी बारे में होगा।
हाँ, उम्मीद की बात वो करते हैं, लेकिन वो कोई आसान राजनीतिक नुस्खा या कोई जादुई तकनीकी समाधान नहीं देते। समाधान का उनका इशारा अंदर की तरफ है, मतलब व्यक्तिगत चेतना के स्तर पर।
अच्छा, अंदर की तरफ? कैसे?
जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा वाले अध्याय में वो कहते हैं कि भविष्य इतना अनिश्चित है, इतना बदल रहा है कि हम बच्चों को ये नहीं बता सकते कि उन्हें कौन सी स्किल सीखनी है या कौन सा करियर चुनना है। वो सब शायद कुछ सालों में बेकार हो जाए।
हाँ, ये तो है।
तो उन्हें सिर्फ जानकारी रटाने के बजाय हमें उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होगा, और इसके लिए 4C सबसे जरूरी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच, सवाल पूछने की क्षमता, कम्युनिकेशन अपनी बात ठीक से कहना और दूसरों को समझना, कोलैबोरेशन मिलकर काम करना, और क्रिएटिविटी कुछ नया सोचना या करना।
4C और इन सबसे बढ़कर बदलाव को अपनाने की क्षमता और जिंदगी भर लगातार सीखते रहने की क्षमता, यही असली स्किल होगी।
और उनका अंतिम सबक क्या है? किताब का अंत कैसे होता है?
किताब का जो अंतिम अध्याय है वो मेडिटेशन यानी ध्यान पर है, और ये काफी व्यक्तिगत भी लगता है क्योंकि हरारी खुद विपस्सना ध्यान का अभ्यास करते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि जब बाहरी ताकतें, सरकारें, कंपनियां, एल्गोरिथम्स हमारे दिमाग को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं,
हाँ,
हमारी भावनाओं और विचारों को कंट्रोल करने की फिराक में है, तो सबसे जरूरी हुनर, सबसे जरूरी स्किल क्या है? अपने ही मन को समझना।
अपने मन को समझना, हाँ, और ध्यान इसका एक प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित तरीका है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी शारीरिक संवेदनाओं को बिना उनसे उलझे, बिना उनके बहकावे में आए, बस एक दूरी से तटस्थ होकर देखना, ये हमें बाहरी शोर और अंदरूनी उथल पुथल के बीच एक संतुलन देता है, स्पष्टता देता है और एक गहरी समझ देता है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर श्रोताओं के लिए कुछ मुख्य बातें, कुछ की थीम्स निकालने हों, तो वो क्या होंगी? क्या है वो बड़े संदेश?
हाँ, जरूर। मेरे हिसाब से पहली और सबसे बड़ी बात है पुरानी कहानियों का अंत। वो जो 20वीं सदी के बड़े विचार थे, खासकर उदारवाद, वो अब इस नई सदी की चुनौतियों के सामने उतने कारगर नहीं रहे। हमें नई सोच, नए नज़रिए की सख्त ज़रूरत है।
बिल्कुल। और दूसरी शायद ये कि तकनीकी क्रांति का दोहरा स्वरूप है। AI और बायोटेक का जो संगम है वो गजब की संभावनाएं तो खोल रहा है, पर साथ ही असमानता, नियंत्रण और भाई इंसान होने का मतलब क्या है, इस पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। ये एक दोधारी तलवार है।
एकदम। तीसरा, मानव मन की हैकिंग का वास्तविक खतरा। हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है वो अब सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं रही, ये एक तकनीकी हकीकत बन सकती है। बाहरी ताकतें हमें हमसे बेहतर समझकर कंट्रोल कर सकती हैं, और इससे डेटावाद, डेटाइज्म जैसी एक नई विचारधारा उभर सकती है।
डेटावाद?
हाँ, मतलब ये विश्वास कि हर चीज डेटा है और किसी भी चीज की कीमत उसके डेटा प्रोसेसिंग में योगदान से तय होती है। मतलब डेटा ही भगवान बन जाए और इंसान शायद पीछे छूट जाए।
बाप रे। और चौथा पॉइंट?
चौथा, राष्ट्रवाद की सीमाएं। जैसा हमने कहा, जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध का खतरा या AI को कैसे रेगुलेट करें, ये आज की बड़ी समस्याएं ग्लोबल हैं। कोई भी देश अकेले इनका हल नहीं निकाल सकता। राष्ट्रवाद जरूरी हो सकता है अपनी जगह, पर वैश्विक सहयोग के बिना काम नहीं चलने वाला। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक, स्पष्टता और आत्मज्ञान का महत्व। सूचना और शोर के इस युग में सच और झूठ में फर्क करने की क्षमता, मतलब क्लैरिटी इज पावर।
हाँ,
और शायद फलने फूलने के सबसे जरूरी हथियार हैं।
और अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये सारी बातें कितनी जानी पहचानी लगती हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ भी, बिजली की रफ्तार से बढ़ रही है, नौकरियों पर असर की चिंता हम सबको है, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का जहर हम रोज देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का असर हमारे किसानों पर, हमारे शहरों पर पड़ रहा है। ये किताब वाकई वाकई आईना दिखाती है।
सही कहा। और इस किताब में ना कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जो शायद दिमाग में अटक जाए, कुछ कोट्स।
हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कि एक जो मुझे बहुत असरदार लगी, सूचना के सैलाब वाली दुनिया में स्पष्टता ही शक्ति है। मतलब साफ है, आज असली ताकत ज्यादा जानकारी होने में नहीं है,
नहीं,
बल्कि बेकार की जानकारी के शोर से ऊपर उठकर काम की चीज पहचानने और साफ साफ सोचने में है।
Humans are hackable animals. ये शायद सबसे सीधी और बोल्ड बात है किताब की।
हाँ,
ये हमें याद दिलाती है कि हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी कमजोरियां, इन्हें समझा जा सकता है और टेक्नोलॉजी के जरिए इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हमें सावधान रहना होगा।
और एक और जो शायद आत्मज्ञान पर बहुत जोर देती है, 21वीं सदी में जीने और फलने फूलने के लिए आपको खुद को उन एल्गोरिदम से बेहतर जानना होगा जो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ,
ये तो जैसे पूरी किताब का सार ही है कि भाई बाहरी दुनिया को समझने के साथ साथ, या शायद उससे भी पहले, अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा।
बिल्कुल। ये बातें सुनने में तो बहुत गहरी हैं, बहुत जरूरी भी लगती हैं, लेकिन सवाल उठता है कि हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। मतलब कुछ कुछ व्यवहारिक कदम, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स।
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। आखिर हम कर क्या सकते हैं?
हाँ, देखिए, कुछ चीजें हैं जो शायद हम सब कोशिश कर सकते हैं। पहला, मानसिक लचीलापन बढ़ाना, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। ये मानकर चलना कि दुनिया तेजी से बदलेगी, हमें भी बदलना होगा, हमें जिंदगी भर सीखते रहना होगा। हो सकता है हमें अपनी जिंदगी में कई बार अपना करियर, अपना काम करने का तरीका बदलना पड़े, तो किसी एक पहचान या स्किल से बहुत ज्यादा चिपक कर ना रहें।
बदलाव के लिए तैयार रहना।
बिल्कुल। दूसरा, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन। कभी कभी रुक कर सोचना, यार मेरी ये जो भावना है, ये इच्छा है, ये राय है, क्या ये वाकई मेरी अपनी है या कहीं बाहर से आई है, सोशल मीडिया से, विज्ञापनों से या किसी और के असर से। सजगता यानी माइंडफुलनेस या ध्यान जैसी चीजें इसमें मदद कर सकती हैं।
और सूचनाओं के इस जंगल में उसमें रास्ता कैसे खोजें?
हाँ, वो तीसरा पॉइंट है, सूचना के स्रोत समझदारी से चुनना। सिर्फ वही ना देखें या पढ़ें जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करता हो।
हाँ, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना।
बिल्कुल। अलग अलग नजरिए जानने की कोशिश करें, हर खबर पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत से बचें, थोड़ी थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करें। चौथा, उन स्किल्स पर ध्यान देना जिन्हें AI आसानी से नहीं कर सकता, यानी वही 4 C जो हमने डिस्कस किए,
क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी।
हाँ बिल्कुल। सवाल पूछना, बातचीत करना, मिलकर काम करना, नया सोचना, इन्हें अपनी पढ़ाई में या काम में शामिल करने की कोशिश करें। और पांचवा, थोड़ा बड़ा सोचना, मतलब अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या असमानता, उनके बारे में भी सोचें और देखें कि हम छोटे स्तर पर क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका समझें। इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि बाहरी दुनिया जितनी पेचीदा और शोर भरी होती जा रही है और जितनी ज्यादा ताकतें हमारे ध्यान और हमारे फैसलों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, उतनी ही ज्यादा जरूरत हमें अपने अंदर झांकने की है, अपने मन को शांत और साफ रखने की है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अब सिर्फ कोई दार्शनिक या आध्यात्मिक शौक नहीं रह गया है,
नहीं,
बल्कि इस सदी में अपनी आजादी और अपनी समझ बनाए रखने का एक जरूरी तरीका, एक सर्वाइवल स्किल बन गई है।
बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए सबसे अहम एहसास ये है कि हमारे जो पुराने नक्शे हैं, मतलब दुनिया को समझने के हमारे पुराने तरीके, हमारी पुरानी विचारधाराएं, वो अब इस नए तेजी से बदलते इलाके में पूरी तरह काम नहीं आ रहे हैं, नक्शे पुराने हो गए हैं।
हमें हिम्मत के साथ और साफ सोच के साथ नए रास्ते खोजने होंगे, और जैसा हरारी बार बार इशारा करते हैं, इन नए रास्तों की खोज शायद खुद को और अपने मन को बेहतर समझने से ही शुरू होती है। ये किताब हमें यही करने के लिए उकसाती है, सवाल पूछने, गहराई से सोचने और सबसे जरूरी, खुद को जानने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।